بیان الاظفار، نخنو کا بیان، پیج 163 اور 4 اور مسئلہ نمبر 201 سے. ناخن کاٹنا سنت ہے. آپ نے وہ حدیث پڑھی ہے نا اوپر 10 چیزیں، اس میں ناخن کاٹنا بھی تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ پانچ باتیں انسان کی فطرت میں ہیں. فطرت سے کیا مراد ہے؟ انسان چاہتا ہے کیسا ہو. نمبر ایک، ختنہ کروانا، زیر ناف بال صاف کرنا، مونچھے کترانا، ناخن کاٹنا، بغل کے بال صاف کرنا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اب آپ دیکھیں کہ اگر انسان حقیقت پسند ہو تو واقعی دیکھ لیجئے ان میں سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو انسان کو بری لگے. اور حیرت کی بات ہے، اب دیکھیں ختنہ کرانا، یہ اسلام کا وہ ایک ریچول تھا جس کو آج کی سائنس نے بھی مان لیا. آج وہ بچے جن کا ختنہ ہوتا ہے کہتے ہیں کہ وہ ایسی جگہوں کے کینسر سے محفوظ ہیں، ان میں سیکشوالٹی کی طاقت زیادہ ہے اور ان کی عورتیں زیادہ محفوظ ہیں. اب یہ چیزیں دیکھ کر اگلے دور میں غیر مسلموں نے بھی کرانا شروع کر دینا، تو یہ اللہ کی شان ہے. اور آپ کہتے ہیں کہ اس کی ایک اور حکمت بھی ہے، یہ جنگوں میں جب زخمی ملتے تھے یا فوت شدہ لوگ، تو ان کی اسلام کی پہچان تھی کہ کون مسلمان ہے اور کون نہیں ہے. پھر اس کے بعد جمعے کے روز ناخن کاٹنے مستحب ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ وہ ہر جمعے کو اپنے ناخن کاٹتے اور مونچھے کتراتے. شہر و سنہ میں ذکر ہے. اب کیا بیچ میں نہیں کٹا سکتے؟ کٹاتا ہے کوئی تو جمعے کو ضرور کاٹے، یہ مراد ہے. ٹھیک ہے، اس کو آلٹرنیٹ میں لے یا جیسے بھی، لیکن جمعے کا اہتمام کیا جائے. حضرت معاویہ بن قرہ سے روایت ہے کہ ان کے دو چچا جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا، وہ دونوں اپنی مونچھے اور ناخن جمعے کے روز کاٹتے تھے. شرح السنہ میں اس کا ذکر ہے. حضرت ابراہیم نخعی رحمہ اللہ، جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے استاد تھے، فرماتے ہیں کہ جمعے کے روز آدمی کا ناخن کاٹنا مستحب ہے، پسندیدہ ہے. شرح السنہ میں اس کا ذکر ہے. 40 دن سے زیادہ ناخن بڑھانا منع ہے. حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ ہمارے لیے مونچھے کترانے، ناخن کاٹنے، سر منڈانے اور بغل کے بال صاف کرنے کی حد 40 دن مقرر فرمائی گئی کہ 40 دن سے زیادہ نہ بڑھنے دیں. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. 40 دن کے بعد اگر بڑھتے ہیں تو وہ پھر جائز نہیں ہوتے. اب آپ دیکھیے کہ آپ کہیں یہ تو حکم پتہ نہیں کس کے لیے تھا، نہ عورتوں کا حکم ہے نہ مردوں کا، تو پھر آپ کے میرے لیے کوئی الگ قانون تو نہیں ہے. پورے دین کی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر کہی گئیں، تو یہ جو ناخن کٹانے کا حکم تھا یہ عورتوں اور مردوں دونوں کے لیے. ٹھیک ہے، کوئی سوال تو نہیں ہے ناخنوں کے بارے میں؟ میں اکثر سوچتی ہوں ناخن بڑھا کر ایک عورت کیا بننا چاہتی ہے. لمبے ناخن کس کے ہوتے ہیں؟ آپ ان ناخنوں سے کیا اپنا کوئی ہتھیار اسلحہ؟ وہ ہمارے ساتھی تھی، ایک تو اسکول کی بات ہے کالج کی، تو آپ کہتے ہیں کہ اسکولوں میں پہلے منع کرتے تھے، آپ کا تو مجھے نہیں پتا. تو ایک لڑکی تھی تو اس کے ناخن لمبے تھے، تو ٹیچر نے پوچھا ناخن کیوں بڑھائے ہوئے؟ وہ ٹیچر میرے بھائی کی شادی ہے. تو کہنے لگی تم نے بھابھی کو کھانا ہے؟ یعنی اگر ناخن لمبے کیے ہیں تو کیا تم نے کوئی اپنا دفاع کرنا ہے؟ ہر چیز حساب سے اچھی لگتی ہے. جی جی اصل یہ بات ہے کہ ہمیں اس کا یقین نہیں کہ یہ دینے والی ذات کون ہے. کبھی سوچیں آپ اور میں یہاں کس کے حکم سے بیٹھے ہوئے ہیں؟ ابھی کمر دوری ہو جائے اٹھ نہیں سکتے، ابھی سر میں درد لگ جائے چھٹ نہیں سکتا. جس ذات کا، جس ہستی کا اتنا کنٹرول ہے ہمارے اوپر، آپ بتائیں کیا ہم اس کا حکم نہیں مان سکتے؟ تو اگلا حکم ہے ختنے کا، بیان الاختتان، پیج 165 اور 6. ختنے کا بیان، ختنہ کرنا مسنون ہے. حدیث 201 میں بھی ہم پڑھ کے آئے ہیں. سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ختنہ کیا. کیا مطلب خود اپنا کیا؟ جی بالکل کیا. حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے مہمان کی ضیافت کی، سب سے پہلے اپنا ختنہ کیا، سب سے پہلے مونچھیں کتروائیں، سب سے پہلے سفید بال دیکھے اور عرض کی کہ یا اللہ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ عزت اور وقار ہے. حضرت ابراہیم نے فرمایا میرے رب میرے عزت اور وقار میں اضافہ فرما. اسے مالک نے روایت کیا. اب اس سے ایک دلیل مل گئی कि अगर बचपन में माँ बाप ने नहीं किया किसी का तो बड़ा होने पे भी उसका खतना हो सकता है। फिर उसके बाद आप देखिए कि अगला बाप है पेज 166 और 7, बयान शारी, बालों का बयान। ये शार क्या है? बाल। तो शौर क्या होता है? बाल जैसी बारीक समझ, ये मांगने की जरूरत है। बहुत सारे लोग बेशौरी जिंदगी गुजारते हैं, तो ऐसे ही आपका दोनों का रब बताया कि शौर में बाल छुपे हुए हैं, यानी छुपी हुई सी समझ। सर के बल कानों और कंधों के दरमियान तक रखने मुस्तहब है। यानी हमारे कल्चर में तो मर्दों के बाल बहुत ऊंचे होते हैं ना, लेकिन अगर कोई मर्द रखना चाहे लंबे बाल तो कंधों तक रख सकता है, इससे नीचे नहीं रख सकता, ये मुराद है। हज़रत कतादा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैंने हज़रत अनस बिन मालिक से रसूलुल्लाह के बालों के मुतल्लिक पूछा, तो आप हज़रत अनस ने बताया कि आपके बाल ना तो बिल्कुल सीधे थे ना मुकम्मल तौर पर घुंघराले, बल्कि ज़रा खम लिए हुए थे और लंबाई में आपके कानों और कंधों के दरमियान तक थे। इसे बुखारी ने रिवायत किया। फिर अगली रिवायत हज़रत अनस से है, कहते हैं कि रसूलुल्लाह के बाल कानों की लो तक थे। ये लो होती है ना जहाँ अक्सर हम बुंदा पहनते हैं, वही चीज़ है। इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया। सर के बालों की मांग दरमियान से निकालनी मुस्तहब है। और याद रखिए मर्दों के लिए भी है, औरतों के लिए तो हम करते ही हैं लेकिन मर्दों के लिए। और इसमें जहां भी आपको कोई डिस्क्रिमिनेशन ना मिले तो समझे कि वो हुक्म दोनों के लिए। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि मैं रसूलुल्लाह के बालों की मांग निकालना चाहती तो सर मुबारक के दरमियान से निकालती, दोनों आंखों के दरमियान से, आधे बाल इधर और आधे बाल उधर। इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया। चलें, मांग तो समझ आई, इससे कुछ और भी समझ आया कि बीवी अपने शौहर की कंघी कर सकती। कभी की आपने? यानी आप ये कहें कि अगर ये करनी शुरू कर दी तो ये काम भी हमें ही करना पड़ेगा। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। बालों में तेल लगाना मुस्तहब है। हज़रत जाबिर बिन समूरा रजी अल्लाह अन्हो से रिवायत, रसूलुल्लाह के बालों की सफ़ेदी के बारे में पूछा गया, यानी आपके कितने बाल सफ़ेद थे तो पूछा गया, तो उन्होंने फरमाया जब रसूलुल्लाह अपने सर मुबारक में तेल लगाते तो सफ़ेदी मालूम ना होती और जब तेल ना लगाते तो सफ़ेदी मालूम होती। इसे निसाई ने रिवायत किया। और याद रखिए कि अल्लाह के नबी के सर और दाढ़ी मुबारक में 17 से 20 तक सफ़ेद बाल थे, बाकी सब काले थे। तिर्मिज़ी और इब्ने माजा से हमें पता चलता है। अच्छा, यहाँ एक बड़ी मज़े की बात है। अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया कि जिसने मुझे ख्वाब में देखा उसने मुझे ही देखा, क्योंकि शैतान मेरी शबीह नहीं बना सकता। कोई एक अपना वाक़या सुना रहा था किसी को, मैंने ख्वाब में देखा अल्लाह के नबी मेरे घर आए हैं, जैसे लोगों के जहनों में होता है। तो किसी ने पूछा, अच्छा सुनाओ कैसे हैं? सफ़ेद दाढ़ी, नूरानी चेहरा, लंबे, जैसे हमारे जिम्मे एक बुज़ुर्ग का चेहरा। उन्होंने वहीं रोक दिया, कहा शैतान तेरे पास आया है वो मोहम्मद सल्लम नहीं हो सकते, क्योंकि आपकी दाढ़ी के तो चंद बालों के सिवा कोई बाल भी सफ़ेद नहीं थे। बात समझ रहे हैं? तो आप, और देखिए 63 में दुनिया से गए ना, तो आपके उस वक्त तक बाल सफ़ेद हैं। आज खैर से कब बाल सफ़ेद हो जाते हैं? 20 साल के बाद ही। और एक दफ़ा आप कोई केमिकल तो लगा के देखें, फिर तो आप हर हफ्ते, क्या मेरे ख्याल महीने में एक दो बार तो लोग करते ही होंगे, फिर जब ऐसा कोई इशू होता है तो। जी बच्चों के भी हो रहा है वो, तभी कहते हैं ना कि हमने ये बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए हैं। तो बहरहाल खुराक ऐसी है जिसकी वजह से जो भी है, लेकिन नबी सल्लम के बाल सफ़ेद नहीं थे। बालों को साफ रखना मुस्तहब है। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं रसूलुल्लाह ने फरमाया जिसके बाल हों वो इन्हें अच्छी तरह संवार कर रखे। और इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया। तो फिर इससे दलील मिल गई ना हेयर शॉप्स बनाने की और 70 किस्म के केमिकल लगाने की। आपके इस मुल्क में, शहर में भी दुकानें हैं, मैंने गुजरते हुए देखा है, ऑल अबाउट हेयर्स। और मेरे ख्याल कुछ 700 किस्म का प्रोडक्ट पड़ा है। मुझे तो ये समझ नहीं आती, बल्कि मैं सच्ची बताऊँ बहुत ट्रैवल करती हूँ, तो जो होस्ट होते हैं मैं उनसे अक्सर कहती हूँ कि बास लोग होते हैं ना, वो शैम्पू भी होता है, फिर आपका क्या जी ये बॉडी लोशन है, ये फेस लोशन है। अच्छा, बाज लोग वहाँ मॉइस्चराइज़र भी रख देते हैं जो नहाने धोने के बाद शायद लगाते हैं, तो अक्सर वही यूज़ हो जाता है। पता चलता है ये चिकना क्यों नहीं हो रहा, पता चला ये तो बाद में लगाना है। इतनी चीज़ों में चूज़ कौन करे? भूलू ना तो न्यूटन की बात है, तो उसने कहा यानी जो भी है सर और बालों के लिए 2 लाख चीज़ें नहीं इस्तेमाल कर सकता, शैम्पू से सारा जिस्म धो लेता हूँ क्योंकि मेरे पास इतना वक्त नहीं कि मैं इस पर लगाऊँ कि किससे बाल धोने और किससे जिस्म। और मैंने अभी बॉडी का नाम लिया, तो जब भी कभी किसी बॉडी लोशन बढ़ूँ तो मुझे तो वो दूसरी बॉडी याद आ जाती है। उस बॉडी को क्या लगाते हैं, क्या लगाते हैं पता, कफूर लगाते हैं। तो हद में रहकर बालों, चेहरों, मुंह को रखें। 20 किस्म की क्रीमें अगर बाथरूम में पड़ी हैं तो सबक कब याद करेंगे, वो तो वही याद करने में सारी एनर्जी लग गई जी। किसको बुरा लगा ये मेरा जुमला, चले मुझे माफ कर दे फिर। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं जिनके बाल हों इन्हें अच्छी तरह संवार कर रखें। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला कहते हैं नबी अकरम हमारे पास तशरीफ लाए और एक आदमी को देखा जिसके बाल प्रगंदा थे। प्रगंदा का मनी समझते हैं, बिखरे हुए थे, मैसी थे। आपने इरशाद फरमाया क्या इस आदमी से इतना भी नहीं हो सका कि अपने बाल ही ठीक कर ले। अच्छा, कुछ खवातीन खुद अपने बाल प्रगंदा कराती हैं, कैसे, मैं नाम नहीं लेना चाहती। आपने ले लिया, सही लिया है, जरा सा ऊंची बोल दें। यानी पहले तो सिर्फ बैक कॉमिंग थी ना, कि जो जुल्म और फिर जो खुलते हुए जो जुल्म और होते हुए जो जुल्म। इस दफा मैंने एक जगह किसी एक सिस्टर को देखा, पहले तो थे वो कुछ और थी, फिर दूसरे पे देखा तो कुछ और। उसका नाम मुझे लेना नहीं आता, सच्ची बात है, माइंड ना करेंगे आप लोग, लेकिन वो प्रोसेस मेरा ख्याल है जो मुझे उन्होंने बताया था कि अच्छे पार्लर्स में 25-30 हज़ार रुपये का, कोई बड़ी मुरव्वत से कर दे तो 10 हज़ार है। और जो उसका तरीका है, तो मैंने कहा अल्लाहुम्मा जिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा जिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा जिरना मिनन नार। बालों को जला जला के सीधा करते हैं, फिर क्या है कि वो बस सीधे ही रहते हैं। तो बहरहाल आप देखिए, इतना ब्यूटी कॉन्शियस नहीं बंदे को होना चाहिए। जो भी है आप जाने, मैं गलत बोलने से बेहतर है ना बोलो। देखिए फिर मैं कहूंगी सॉरी, मैं कोई फतवे नहीं दे रही, हलाल हराम नहीं कह रही, मैं सिर्फ आपको एक बामकसद और एक इधर उधर रैंडमली वॉन्डरिंग पर्सन की बात कर रही हूँ। जिसके पास इतना वक्त है वो तो करे, उसको अच्छी बात है, फिर और भी तो क्या करना है। लेकिन इन चीज़ों में खोकर फिर हमारे पास वक्त नहीं। बस लोग पार्लर्स में 10-10, 6-6, 8-8, 10-10 घंटे बैठ के अपने आप को सेट करते हैं। क्लास में 2 घंटे से ज़्यादा नहीं आ सकते, बैठ नहीं सकते, कितने लंबा लगता है, इंतज़ार करना पड़ता है। और आप देखिए जब हम ब्यूटी कॉन्शियस हुए, आज ये अपॉइंटमेंट, अच्छा पहले अपॉइंटमेंट होती थी, अल्लाह रहम करे मुकदमा होता था तो अपॉइंटमेंट थी वकील के साथ या कोई किसी इधर उधर, फिर अल्लाह के हुक्म से डॉक्टर्स जब इस्टेब्लिश हुए तो मेडिकल अपॉइंटमेंट्स थी, और अब ये अपॉइंटमेंट्स हैं। आज ब्लीच अपॉइंटमेंट है, आज पेडिक्योर अपॉइंटमेंट, आज मैनीक्योर अपॉइंटमेंट, आज हेयर कॉम। तो महीने के 30 दिनों में अगर 10 दफा भी आप पार्लर जाएंगे तो हर जगह आपने क्या सजाया। मैं मना नहीं करती, अच्छी बात है, खुद हम पढ़ रहे हैं कि बालों को बखेरो नहीं, बालों को संवारो, हेयर स्टाइल बनाना है बना लो, बट इसको मकसद हयात ना बनाओ, हर वक्त का हम और गम यही ना हो। खैर, जिसको बुरा लगे वो फिर मुझे माफ कर दे। सर के बाल उतरवाते हुए पहले दाईं तरफ फिर बाईं तरफ से उतरवाने मसनून है। क्यों भला? इसलिए कि हर काम शुरू ही सीधी तरफ से किया जाता है। हजरत अनस बिन मालिक से रिवायत है, रसूलुल्लाह ने मुज़दलिफा से मीना आने के बाद पहले जमरे अकबा को कंकरियां मारी, फिर ऊंटों की तरफ तशरीफ ले गए, इन्हें ज़िबा किया। पास ही हिजाम बैठा हुआ था, आपने इसे हाथ के इशारे से सर मुड़ने का हुक्म दिया। इसने सर का दायां हिस्सा मोड़ दिया, आपने बाल नज़दीक बैठे हुए लोगों में तकसीम कर दिए। फिर आपने हजाम को सर का बायां हिस्सा मोड़ने का हुक्म दिया, फिर पूछा अबू तलहा कहाँ है। वो हाजिर हुए तो आपने वो बाल इनको इनायत फरमाए। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया। सर के कुछ बाल मुंडवाने या कुछ छोड़ देने मना है, आज के दौर में ये फैशन है, बिल्कुल बीच में बाल रखते हैं और पीछे से, अभी बल्कि एक और भी आएगा, यानी मिसाल है कि आधे सर के काट लें आधे के छोड़ दें, ये पसंदीदा नहीं है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने कज़ा से मना फरमाया, इसे बुखारी ने रिवायत किया। तो इसका एक ख़ास मकसद है। कज़ा का मतलब क्या है? एक जगह से बाल काटे जाएं और दूसरी जगह छोड़ दिए जाएं, जैसे लट वगैरह, यानी बाद लोग बीच में से एक लट छोड़ देते हैं। इसी तरह आपने कुछ छोटे बच्चों के देखे होंगे, बीच में बाल होते हैं लेकिन नीचे से पूरा ऐसे 2-3 इंच पूरा काट देते हैं, नीचे गर्दन जैसे प्याला सा बना हुआ सर में, वो भी जायज़ नहीं है। सर या दाढ़ी से सफ़ेद बाल उखाड़ना मकरूह है, यानी अगर एक आधा दिखा तो उसको काट दें या खींच दें। हज़रत अमर बिन शुएब अपने बाप से और वो अपने दादा से रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सफ़ेद बाल मत उखाड़ो। हर वो मुसलमान जिसके हालत इस्लाम में बाल सफ़ेद होते हैं, वो क़्यामत के रोज़ इसके लिए नूर होंगे। और यहया की हदीस में फरमाया कि अल्लाह ताला हर सफ़ेद बाल के बदले में इसके नामे अमाल में एक नेकी लिखेंगे और एक गुनाह मुआफ़ फरमाएंगे। इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया। तो उस दिन क्या दिल चाहेगा, सारे ही बाल सफ़ेद होते हैं। हज़रत अमर बिन शुएब अपने बाप से और वो अपने दादा से रिवायत करते हैं कि नबी अकरम ने फरमाया, हमें सफ़ैद बाल निकालने से मना फरमाया। आपका इरशाद मुबारक है कि सफ़ैद बाल मोमिन का नूर है, इसे इब्ने माजा ने रिवायत किया। अच्छा, पहले तो उम्र के साथ होते थे या तजर्बों से होते थे, और किसी ने मुझे बताया कि उन्होंने कलर बाल कराए हैं, यानी ब्लैक बाल हर एक के। तो मैंने कहा कि काले रंग भी तो कुछ नहीं चढ़ता, तो आपके वो गोल्डन भी कुछ जैसे लाइट गोल्डन थे। कहती पहले वो सारे बाल सफ़ेद करती हैं, ब्लीच जैसे डाल के कपड़े में प्योर वाइट होते हैं, फिर जो शेड ऊपर लगा लें। तो मेरे तो दिल को ही हाथ पड़ गया सोच के कि ये एक दफ़ा का शुगल तो नहीं, अगर आगे से दिल ना किया दूसरा कराने को। तो मैंने कहा कि फिर दिल चाहे दोबारा काले करने को, तो फिर सारी उम्र काला रंग डालो। बात समझ रहे? तो बड़ी हिम्मत की बात है। वैसे तो हम एक एक बाल चाहते हैं कि हमारा सफ़ेद ना हो, लेकिन खुद पूरे बाल पूरे वाइट करने, तो मैंने दिल में सोचा कि जब पूरे वाइट हुए होंगे ये कैसी लगी होंगी। जाहरी बात है अपनी उम्र से बंदा 50 साल आगे ही जाएगा ना, जैसे बूढ़े होके होंगे। सफ़ेद बाल मोमिन का नूर है। सर के बाल कानों की लो से ज़्यादा बढ़ाना नहुसत ही नहुसत है। हज़रत वाइल बिन हुजर रज़ी अल्लाह अन्हो कहते हैं कि मैं नबी अकरम की खिदमत में हाजिर हुआ, इस वक्त मेरे सर के बाल लंबे थे। जब रसूलुल्लाह ने मुझे देखा तो फरमाया, नहुसत ही नहुसत। हज़रत वाइल बिन हुजर कहते हैं कि मैं इसी वक्त वापस आया और अपने बाल काट कर छोटे किए, और दूसरे रोज़ फिर खिदमत अकदस में हाजिर हुआ। तो आपने इरशाद फरमाया, मैंने तेरे से बुराई नहीं की और अब बाल अच्छे हैं, इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया। यानी उन्होंने माइंड नहीं किया कि अल्लाह के नबी ने मेरे लिए ये क्यों कहा कि नहुसत ही नहुसत। आज अगर आप किसी के लंबे नाखून या बाल देखें और कहें हाँ जरा आगे से नहुसत है, तो कितना लोग माइंड करते हैं। तो माइंड नहीं किया और कर लिया, और बाद में अल्लाह के नबी से भी तारीफ भी सुन ली कि आप अच्छे लग रहे हो। नौमलूत कौन होता है? न्यू बॉर्न। नौमलूत के बाल 7वें दिन मुंडवाना मसनून है। हजरत समूरा रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बच्चा अकीके के बदले रहन होता है, लिहाजा इसकी तरफ से 7वें रोज जानवर जिबा किया जाए, इसका नाम रखा जाए और इसका सर मूंडा जाए। इसे तिरमिजी ने रिवायत किया है। औरत के सर के बाल काटना मना है। अब ये इशू जरा सा गौर से सुनिएगा। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह ने औरतों से मुशाबत इख्तियार करने वाले मर्दों और मर्दों से मुशाबत इख्तियार करने वाली औरतों पर लानत फरमाई। इसे बुखारी ने रिवायत किया। दूसरी हदीस हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, उमरा या हज के बाद औरतों के सर मुंडवाना नहीं बल्कि बाल एक पोर के बराबर काटना है। इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया है। अब आप देखिए कि ये दो बातें क्रिटिकल है जो मैं खुद भी चेंज कराऊंगी, क्योंकि यहाँ इस बुक से इधर इन्होंने सिर्फ इतनी ही बात पेश की है। हालांकि अगर आप इस इशू को मोर इस पे करें तो शरायत के साथ जायज़ है। यानी ये जो हमारे कल्चर में औरत के बालों को कैंची नहीं लग सकती, लोहा नहीं लगा सकते, ऐसी कोई बात नहीं है। शरायत दो हैं, वो लिख लें। नंबर एक, मर्दों की मुशाबियत ना हो। हमारे कल्चर में तो उसको बुआई काट कहते हैं। और दूसरी बात है, गैर मुस्लिमों से मुशाबियत ना हो। एक दौर था डायना कट बहुत मशहूर हुआ था, और सब जानते हैं डायना अपने वक्त की एक शहजादी थी। तो ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए कहा। इसके अलावा लिटरली औरतों के बाल काटने से मना नहीं है, बस इतना सा समझ लें। और अगर आप इस पे ज़्यादा रिसर्च करना चाहें तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मौजू मौजूद है, आप जाके इस्लाम क्यूए पे भी पढ़ लें। दोनों तरह की बातें हैं, लेकिन इन मसलों पे बहस ना करें, ये बात याद रखिए हमेशा से। और यहाँ फिर ये भी कहूँगी कि बाल काटे ना, लंबे ही बाल रखें और खुले छोड़ दें और गैरों को दिखा दें, उससे बेहतर है कि बाल कटे हों और छुपे हों। यानी औरत की खूबसूरती अपने और अपने महरम के लिए, लेकिन जब हम चाहे बाल खोलें चाहे काटें ना काटें, लेकिन जब बेपर्दगी में काटते हैं खूबसूरती के लिए, फिर तो बिल्कुल नहीं काटने चाहिए, ये भी याद रखिए। एक औरत है आम बालों में आम लगती है फिर भी बेपर्द है, दूसरी है कि वो बालों को खूब सजा संवार के काटती कटाती है तो अच्छी लगती है फिर भी बेपर्दगी करती है। और से समझ है? यानी इस बुक में जो इन्होंने कहा कि नहीं काट सकती, उसकी एक किल्लत आप ये पेश कर सकते हैं कि बाल कटने के बाद औरत ज्यादा खूबसूरत दिखती है, तो जब बेपर्दगी करेगी तो ज्यादा फितना होगा ना, तो फिर बेहतर है कि ना करे। हजरत इब्ने अब्बास कहते हैं, रसूलुल्लाह ने फरमाया, उमरा या हज के बाद औरतों के लिए सर मुंडाना नहीं बल्कि एक बाल एक पोर के बराबर काटना। यानी मर्द तो पूरा सर शेव करते हैं ना, तो औरत सिर्फ पीछे से या कहीं से थोड़े से काटेगी। सर से बाल उतरवाते वक्त या उतारने के बाद कोई दुआ मांगना सुन्नत से साबित नहीं। बाल काटने के बाद इन्हें जमीन में दफन करना सुन्नत से साबित नहीं है। जैसे पीछे भी हमने बात की थी, बाज बड़ी औरतें थी, वो थैलियां बना लेती थी, उसमें रखती थी, पानी में डाल दिया, काट दी, उनका अपना अमल हो सकता है। बाज कहते हैं बालों पे चूंकि जादू होने का खतरा होता है, तो वह हर इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर आप कुछ करती हैं तो इट्स ओके, नहीं करती तो नो प्रॉब्लम।